ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने, दादियों ने हम बच्चों को ये तीन बार ओम शांति का महामंत्र बोलना सिखा दिया है। और आज के मुरली के बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा कहे ये पांच विकारों की जो मंजिल बताई कि सबसे ऊपर पांचवी मंजिल है देहाभिमान, फिर है काम विकार, फिर है क्रोध अग्नि, फिर है लोभ और फिर है मोह। तो बाबा कहे कि ये पांचों ही मंजिल जो है वो हर रीति से अगर देखा जाए तो बच्चे को कोई न कोई प्रकार की तकलीफ कहो या परिस्थिति क्रिएट करने के निमित्त जरूर बनती है। इसका जो विषय है स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय। तो मेजॉरिटी जो परिस्थितियां क्रिएट होती है उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि कोई न कोई कमजोरी कहो, कोई न कोई विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो उस समय परिस्थिति निर्मित होती है और वो परिस्थिति हमारे सामने आती है। कभी कभी कई लोग बहुत घबरा जाते हैं, ये परिस्थिति हमारे सामने क्यों आई, और अनेक प्रकार के क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। और उसका समाधान सोचने के बजाय उसको नेगेटिवली सोच सोच करके बड़ा बना देते हैं, जो फिर उस परिस्थिति को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। परिस्थिति बहुत बड़ी नजर आती है और खुद जैसे उसके सामने बहुत छोटे हो गए, ये महसूस कराता है। और तब हम उस परिस्थिति के शिकार बनते हैं, परिस्थिति के वश हो जाते हैं, या परिस्थिति हमारे लिए जैसे असंभव एहसास दिलाती है, इसको क्रॉस करना हमारे लिए असंभव है। लेकिन स्वस्थिति को इतना बड़ा बना दो, और स्वस्थिति बनाने का आधार क्या, तो सबसे पहला आधार स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने का स्वमान। कौन सा स्वमान लेंगे? परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए या परिस्थिति को छोटा करके खुद को बड़ा बनाने के लिए, जैसे शास्त्रों के अंदर दिखाते हैं ना कि कई बार रावण के पास, इन लोगों के पास भी ये शक्ति थी कि अपने फॉर्म को, अपने स्वरूप को छोटा करना भी आता था और बड़ा करना भी आ जाता था। इसी तरह यहाँ हनुमान जी को भी दिखाते, छोटा होना भी आता था तो बड़ा होना भी आता था। तो इस तरह से जब हम अपने स्वस्थिति को बहुत बड़ा स्वरूप बना दे तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी और तब उसको क्रॉस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला स्वमान हम क्या लेंगे? सबसे सहज सरल स्वमान जो बाबा ने दिया है कि स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान समझो, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को देखो उस सर्वशक्तिमान के साथ, हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, तो ये परिस्थिति क्या बड़ी बात है कि नहीं? बाबा हमारे साथ है, और इसीलिए जहाँ बाबा हमारे साथ है तो कोई बात बड़ी हो ही नहीं सकती है। अभी थोड़ी दिन पहले ही हमारे पास में एक बहन का फोन आया और कहने लगी, बहन जी मैं है ना अकेली अपने परिवार में चलती हूँ, बहुत बंधन है, बहुत सहन करना पड़ता है, 15 साल से मैं सहन करते आई हूँ, मेरे सास ससुर मुझे बहुत कुछ सुनाते रहते हैं, बहुत माना तकलीफ देते हैं, अब माना मेरे से सहन नहीं होता है, तो अब मैं क्या करूं? 15 साल से सहन करते आई, तो मैंने कहा उसको कि तुम जब भी तुम्हारी सास जो है तुम्हें कुछ बोलना शुरू करे, तकलीफ देना शुरू करे, तो क्या समझो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है, उसके उसके बोल को नहीं सुनो, वो जो सुना रही है, वो जो कह रही है उल्टी सीधी बातें, वो नहीं सुनो, और नहीं सुन करके क्या अंदर में लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है, ये मुझे बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? फिर देखो प्रभाव, देखो इस बात से जैसे खुद बड़ा हो जाओ उसको, तो वो आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। सोचो, हजार भुजा वाला बाबा हमारे साथ है और ये हमें बोलने की हिम्मत कर रही है, मैं कौन हूं? अगर उसके शब्द सुनने लगेंगे अपना स्वामान भूल जाएगा, और अपना स्वामान भूल जाएगा तो उसकी एक एक बात तीर लगेगी, अंदर में झुकती जाएगी, लेकिन उस समय उसके शब्द नहीं सुनो और अंदर में ये स्वामान लो, ये देखो। तो जब मैंने उसको ये 5 मिनट समझाया, उसके अंदर वो रो रही थी, पहले रो रही थी, इतना मेरे को सहन करना पड़ता है, इतना 5 मिनट ये बात बता करके स्वमान से जोश अंदर में भर के 5 मिनट के बाद उसके अंदर ऐसी हिम्मत आ गई, शक्ति आ गई जैसे। तो मैंने उसको कहा, देखो मैंने 5 मिनट आपको बोला, आप में कितनी शक्ति आ गई, तो आप जब वो सोचेंगे सामने तो वो आत्मा आपको बोलने की हिम्मत कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो, योग का नाम ही है प्रयोग करना। बाबा ने ये सारे अस्त्र शस्त्र ऐसे ही थोड़ी दिए हैं हमको, वो प्रयोग करने के लिए दिए हैं। हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, लेकिन हम अपने लिए इतना अच्छा सोचे, इतना श्रेष्ठ सोचे, वो वाइब्रेशन ऐसा देवे जो सामने वाले परिस्थिति कैसे भी क्रिएट करने की कोशिश करे उसके अंदर हिम्मत ही ना हो, ऐसा वाइब्रेशन हम तैयार करें अपने लिए, माहौल बनाए हम परिवार के अंदर, घर गृहस्थ में जब रहते हैं तो ऐसा अपने लिए श्रेष्ठ स्वमान का माहौल तैयार करो अपने विचारों। आप खुद ही सोचेंगे, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, और भी बोलते जाएंगे। अब ये सोचो, ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती हमारे आगे, कौन है? तो परिस्थिति अगर कोई व्यक्ति के द्वारा आई है तो उसको सेटल करने का ये बहुत सुंदर तरीका है, प्रयोग करके देखो। और सचमुच बाब कहते हैं आपके संकल्पों में बहुत शक्ति है, और इसीलिए जब ऐसे संकल्प आप निर्मित करेंगे तो परिस्थिति क्या बड़ी बात, कुछ नहीं कर सकती है परिस्थिति, हिला सकती है, विचलित नहीं कर सकती है, इतना पहले से ही। लेकिन हाँ, उसके लिए जैसे कहा जाता है कि सुबह सुबह अमृत वेले बाबे शक्ति अपने में भर लो। तभी वो शक्ति दिन भर में भी काम करेगी। दिन भर में बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, अनेक प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन वो बातों को देखते हुए कौन सी चीज उसमें प्रयोग करनी है, कहां स्वमान प्रयोग करना है, कहां सद्गुणों का प्रयोग करना है, कहां जैसे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जो मिले हैं उसका प्रयोग करो। सद्गुणों का प्रयोग कैसे करना है, तो जब कभी ऐसे देखो तो सहन करने के साथ साथ समाने की शक्ति को अपनाओ। जैसे संडे की मुरली हम सभी ने सुनी बाबा की, बाबा ने कहा था कि रावण से भी तेज हो, कहा ना बाबा ने, रावण से भी तेज हो तो भी आपको सहन करना है, सहन करके उसको शक्ति देनी है, इसीलिए सहन शक्ति कही गई है। तो सहन करके उसको शक्ति देना, तब कहा सहन शक्ति, और उसकी कमजोरियों को भी समाते जाओ, ये शक्ति का प्रयोग करो, तो उस आत्मा को भी शक्ति महसूस होगी कि जैसे शक्ति मिल रही है। इसी तरह कहीं सद्गुणों का प्रयोग करो, सरल हो जाओ। जब कोई अभिमानी व्यक्ति हो, अपना अहंकार दिखा रहा, उसके सामने अड़ना नहीं चाहिए, उसके सामने जैसे दुनिया में कहते पंगा ले नहीं चाहिए, क्या करो सरल बोलो, भाई तू मान, वो अपना अहम पोसना चाहिए, ठीक है सरल हो जाओ, इतना सरलता जीवन बना लो, और सरलता माना इजीनेस आएगी, तो इजीनेस से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, मुड़ जाओ, टर्न हो जाओ। तो सद्गुणों का प्रयोग करो, कहां पर जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान का विवेक का प्रयोग करो, विवेक और धैर्यता। जीवन के अंदर जो परिस्थिति आती है, कई बार हम अधीर्य हो जाते हैं, उसको बिना सही तरीके से समझ कर उसको ठीक करने का प्रयत्न में जुड़ जाते हैं। मैं दिखाता हूँ क्या करना होता है, मैं करता हूँ, तो क्या होगा, वो परिस्थिति सॉल्व होगी या बिगड़ जाएगी। इसीलिए विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए, जिसको कहा जाता है आध्यात्मिक प्रज्ञा, जो हमारा विवेक बढ़ाती है, हमारे विवेक को शार्पन करती है, तो उस आध्यात्मिक प्रज्ञा को धारण करते हुए विवेक शक्ति को यूज करके धैर्यता के साथ समझते हुए फिर क्या करना है, उसकी समझ बाबा ने दी हुई है। तो अधीर्य होने के बजाय धैर्यता से पहले बात को समझो, शांत हो जाओ, उसी समय मुझे जवाब देना ही चाहिए, जरूरी नहीं, लेकिन शांत होकर के सहज भाव से फिर आध्यात्मिक विवेक का प्रयोग करके दे। ये भी नहीं है कि हाँ आपको बोलना ही नहीं, वो बोलता ही जाए, बोलो लेकिन चीज से, प्रेम से, कि जैसे हमें भी कोई कड़क होकर के बोलने की जरूरत नहीं है, अहंकार में आकर के उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन निर्माणता से, प्यार से उस आध्यात्मिक विवेक का प्रयोग। तो बात ऐसे खत्म हो जाएगी, पिघल जाएगी, नहीं तो बढ़ती जाएगी। वो अहंकार बोल रहा है, हम भी अहंकार में बोल रहे हैं, तो क्या होगा, बात तो बिगड़ेगी। जैसे बाबा कई बार सिखाते हैं मुरली के अंदर भी, कि कोई गुस्से में होता है, बहुत आग निकाल रहा होता है, आप पानी डालो, हाँ क्यों नहीं, आप सही है, आप सही है, घर होता ठंडा हो जाता है। और हमारी दादियों को हमने देखा है कैसे करती, बड़ी दादी को हमेशा देखते थे कि कई बार कई लोग ऐसे गुस्से में आते थे, दादी कहती बैठो बैठो बैठो, क्यों नहीं बोलो बोलो क्या कहना है ना, पानी पिएंगे, पानी पीला हो, कैसे दादियां सॉल्व कर, उसको ठंडा कर देना बहुत जरूरी है, फिर उसकी बात को सुनो समझो और फिर उसको मर्यादा के आधार पर, श्रीमत के आधार पर उसको मत दो, स्वीकार करेगा और प्यार से वो बात दी हुई कैसे नहीं स्वीकार कर। तो संस्कारों के कम आने के बजाय श्रीमत से उसके संस्कार को भी ढीला कर, ये तरीका है जुबा ने सिखाया है और प्रैक्टिकल दादियों ने किया है। प्रतिष्ठा को मैनेज करना सहज थोड़ी है, सेंटर को मैनेज करना तो आप अनुभवी है, लेकिन संस्था को इतने सारे सेंटरों को मैनेज करना कितनी होगी, तो भी दादियों के चेहरे पर कभी टेंशन नहीं आया। तो इसीलिए परिस्थिति को हमेशा छोटा करना आना चाहिए, खुद बड़ा हो जाओ, चाहे सद्गुणों के आधार पर, चाहे शक्तियों के आधार पर, चाहे आध्यात्मिक विवेक को लेकर, आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर। ये जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उस समय एक विजन सामने ले आओ, और विजन क्या सामने ले आओ, कि बाबा का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। जब ये देखेंगे कि बाबा का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है तो मेरी कभी हार हो सकती है, मेरी विजय निश्चित है। तो विजय को अनुभव करो कि बाबा का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, विजय हुई पड़ी है, हमारी हार हो नहीं सकती है। बाहर का स्वरूप कितना भी हार वाला महसूस हो, लेकिन उस हार में भी हमारी जीत स्वाभाविक है। ये विजन अपना देखो कि मैं विजयी रत्न हूं बाबा का। तो कभी भी कोई परिस्थिति आपकी स्वस्थिति को हिलाने की कोशिश भी नहीं करेगी, स्थिति को इतनी पावरफुल बनाओ। साथ ही साथ जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति के सामने अपना दृष्टिकोण बदली कर दो। हर परिस्थिति के, जैसे कहा जाता, हर कॉइन के दो साइड होती है, इसी तरह हर परिस्थिति के भी दो साइड जरूर होती है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड को देखेंगे तो घबरा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव साइड को ये देखो कि ये परिस्थिति मुझे क्या देने आई। जीवन के अंदर जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हमें अनुभवी बनाने के लिए आती है, कुछ देने आती है, अनुभव का खजाना देने आ रही है, क्योंकि अंतिम समय उससे भी विकराल स्वरूप की परिस्थितियां होगी, उससे भी बड़े स्वरूप की परिस्थितियां होगी। तो इसीलिए जब बाबा हमें अनुभवी बनाता है, ड्रामा हमें अनुभवी बनाते हैं, तो वो चीज का छोटा स्वरूप अभी आता है अनुभवी बनाने। इसीलिए जब ये समझते हैं कि ये परिस्थिति हमें कोई न कोई अनुभव की सीख जीवन में देने आई है, उस रूप से उसको देखना शुरू करो तो हर समय ऐसा लगेगा परिस्थिति से भी हम प्राप्त कर रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, सीख प्राप्त कर रहे हैं, तो वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बाबा का शिक्षा देने का तरीका अपना है, एक होता है कि मुरली के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन कई जन्मों से हम चलते आ रहे हैं तो कई प्रकार के संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं, तो दृढ़ हो जाने के कारण जो है वो बात ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो परिस्थिति के रूप में आकर के वो हमें सीख दे करके जाती है। तो इसीलिए जब आप ये देखेंगे, दृष्टिकोण ये अपनाएंगे कि ये मुझे क्या देने आई है, तो लेना भी शुरू कर देंगे और आपकी खुशी बरकरार रहेगी। और एक बात है कि जब भी परिस्थिति आती है तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे हाई जंप दे दो। हाई जंप कैसे देंगे? हाई जंप कैसे देंगे? डबल लाइट हो जाओ, लाइट और माइट स्वरूप, लाइट और माइट। लाइट है ज्ञान की और माइट है बाबा की शक्ति की, उसको कहा जाता लाइट और माइट। तो ज्ञान का जो प्रकाश मिला है और बाबा की शक्ति, ये डबल फोर्स जब लग जाता है तो हाई जंप देना आसान हो जाता है। अगर अंदर से लाइटनेस नहीं है, भारीपन है, खुद ही भारी हो गए, भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या हो गया? प्रॉब्लम बड़ी हो गई, मैं छोटी हो गई। और इसलिए जब ऐसे स्वरूप में हम अपने आप को देखने लगते हैं तो टेंशन जरूर क्रिएट होगा, कैसे पार करेंगे, अनेक क्वेश्चंस उत्पन्न होते जाएंगे, क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया, ये अनेक प्रकार की बातें जैसे सामने आती, और भूत भविष्य को जोड़ते हुए हम उस बात को इतना सोच सोच करके बड़ा बना देते हैं, जो डबल लाइट होना तो मुश्किल है। इसीलिए बाबा कहे डबल लाइट हो जाओ, कहां बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ और कंबाइंड होकर के उड़ जाओ, परिस्थिति नीचे रह जाएंगी और आप उड़ करके क्रॉस भी कर लेंगे सहजता से। तो डबल लाइट होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए परिस्थितियां तो अनेक जीवन के अंदर आती है, साथ ही साथ बाबा के महावाक्य को उस समय याद कर, आज के दिन के महावाक्य क्या थे। क्यों बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली रोज सुननी चाहिए, क्योंकि मुरली के अंदर, उस दिन की मुरली के अंदर उसका सॉल्यूशन जरूर है। अगर मुरली नहीं सुनी है तो वो सॉल्यूशन याद नहीं रहेगा, टच नहीं होगा बाबा का। लेकिन जैसे ही हम रोज मुरली सुनते हैं, जैसे ही वो बात आई, वो प्रॉब्लम आई, वो परिस्थिति आई, कि हमें तुरंत क्लिक होगा, हाँ आज बाबा ने ये बात कही, आज ही तो कही, आज ही प्रयोग कर दी। जिस दिन के वाणी में जो बात आती है और उसको यूज करते हैं, उस दिन के वो महावाक्य को हम प्रैक्टिकल यूज करना माना प्रयोग करते हैं, कि आज बाबा ने ये कहा है, चलो देखे करके, जब उसको प्रयोग करके आप देखो तो वो वरदान बन जाता है। वो वरदान महसूस होने लगेगा कि आज का वरदान बाबा का मेरे लिए यही था। तो है वो साधारण सी बात, लेकिन क्योंकि समय पर उसकी स्मृति आ गई और समय पर स्मृति आने से उसका प्रयोग किया, प्रयोग करते ही ऐसा लगा बाबा का वरदान। बहुत सूक्ष्म और गहरी बात है ये, कि जहां हम बाबा के वरदानों को अपने जीवन के अंदर साक्षात अनुभव करें, महसूस करें, तो उसके लिए बाबा ने उस दिन की मुरली के अंदर जो विधि बताई है वो शायद इसीलिए बताई है। कई बार हमने देखा, जैसे बाबा कई बार कहेंगे, बच्चे बाबा तो अनेक प्रकार की विधियां देते हैं, शस्त्र देते हैं, लेकिन हम कभी कभी उन शस्त्र को छोड़ देते बाद में, बार में यूज करें तो पॉइंट भूल जाती है।
नहीं तो बाबा की कर्म विधि भी है और उस विधि से क्या रिजल्ट मिलना है वो भी महसूस कराया है बाबा,
लेकिन हम विधि भूल जाते, सिद्धि को अनुभव करना चाहते हैं। जैसे विधि है कि हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, अब ये याद रखते हैं बाबा मदद करेगा बाबा मदद करेगा, लेकिन बाबा की विधि क्या है? विधि है हिम्मत रखो और कदम बढ़ाओ तो बाबा की मदद का अनुभव होगा, ये विधि है। विधि को भूल जाते हैं और सिद्धि अनुभव करना चाहते हैं। तो इसी तरह बाबा के हर महावाक्य में विधि भी है सिद्धि भी है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उस विधि को स्पष्ट किया हुआ है। कहीं बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को आत्म समझ के मुझे याद करो, विधि है ना, विधि है आत्म समझो, तो बाबा की याद सहजता से रहेगी। लेकिन आत्मा समझा नहीं और बाबा को याद करने का प्रयत्न करते तो क्या होगा? वो अनुभव नहीं होगा, या वो बाबा को याद करने से सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए, संतुष्टि जो अनुभव होनी चाहिए वो तो नहीं होगी। जब विधि का प्रयोग नहीं है तो वो हमें आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं कराता है। जब विधि से करते हैं तो खुशी भी होती है, हल्के भी हो जाते हैं और सफलता भी मिलती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे स्वस्थिति को बहुपल बनाओ। बाबा की अभी कुछ समय पहले की एक मुरली, अव्यक्त मुरली आई थी जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी। बाबा ने कहा कि बच्चे कई लोग कहते हैं कि हमारे बहुत बंधन है, बहुत बंधन है, बहुत बंधन है। बंधन का कारण क्या है और निर्बंधन कैसे बनना है? तो बंधन का कारण है कोई कोई विकार। जब कोई न कोई विकार के वशीभूत होते, वो विकार तो बंधन क्रिएट करने वाला है। विकार का सूक्ष्म में भी प्रयोग हुआ और बंधन क्रिएट हो, ऐसा हो सकता है? बंधन क्रिएट होगा ही और बंधन विघन क्रिएट करता है, वो परिस्थिति का। जब बंधन बना तो बंधन से मुक्त होने विघन तो आएगा। अच्छा, उस विघन के समय अगर मैंने यथार्थ विधि का प्रयोग नहीं किया तो वो बंधन और कड़ा हो जाता है, निर्बंधन नहीं हो पाते हैं। इसलिए बंधन बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, क्योंकि तो सूक्ष्म कमजोरियों के वश भी, कुछलों के वश भी हमने कई कर्म किए तो वो कर्म बंधन क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए बाबा ने विधि बताई कि बच्चे पवित्र बनो, जहाँ पवित्रता है वहाँ निर्बंधन होना सहज हो जाता है। जहाँ कोई ना कोई इम्प्योरिटी है वहाँ बंधन क्रिएट होगा। इम्प्योरिटी माना कोई ना कोई विकार का प्रयोग होना, कोई ना कोई का प्रयोग होना, ये बंधन को क्रिएट करती है। और बंधन बना तो विघन तो आएगा ही आएगा। बंधन बना तो वो बंधन भोगना का अनुभव कराएगा। भोगना का अनुभव होगा या नहीं होगा? भोगना जरूर होगा। बंधन और भोगना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो बंधन है तो भोगना जरूर है, या तो भोग से को सेटल करो या कर्म योग से सेटल करो। कर्म भोग नहीं हो रहा है तो कर्म भोग ही आएगा। तो जहां कोई न कोई कमजोरी का प्रयोग हुआ, बंधन क्रिएट हुआ, वो भोगना का अनुभव जरूर कराएगा। इसीलिए बाबा कहते जहां पवित्र बनेंगे, पवित्र बने निर्बंधन होंगे और निर्बंधन होने से कर्म योगी स्थिति का अनुभव सहजता से कर सकेंगे, वो हमें भोगना नहीं अनुभव कराएगा। कि ये बाबा के अंतिम जो तीन महावाक्य बाबा हमेशा कहते हैं, निराकारी निराकारी निरहंकारी बनो, ये जो तीन महावाक्य उच्चारण हुए ये विधि थी।
ये भोगनाओं को समाप्त करने की ये तीन महावाक्य, या निरी बन जाओ, या निरहंकारी बन जाओ, या निर्विकारी बन जाओ, पर हर परिस्थिति ये तीन में से न कोई एक के माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। यहीं पर निराकारी स्थिति का प्रयोग करके देखो, कहां पर जैसे अहंकार बदले सरलता सहजता अपने नेचर में ले आओ, और कहां पर निर्विकारी बन जाओ, सुधन ही समुना का अनुभव ने। इसीलिए बाबा के तो होने के बाद जब बाबा को भोग लगाया था तो दिन दादी ने जाकर बाबा से पूछा कि बच्चे जानना चाहते हैं आपकी अंतिम समय में स्थिति कैसी थी। तो समय ने क्या कहा, कर्म भोग और योग के लड़ाई चल रही थी, फिर कर्म भोग दर्द पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन बाबा के कोई कर्म नहीं जो वो भोगना अनुभव करा सके या दर्द पहुंचा सके। तो बाबा ने कहा फिर कर्म भोग का हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग की विजयी हो गई। और इसीलिए बाबा को दर्द पहुंच नहीं सका, वो हार्ट अटैक में आया तो हार्ट अटैक भी दर्द पहुंचा नहीं सका, क्योंकि कोई बंधन ही नहीं रहे थे बाबा के, न कोई बंधन थे न कोई विघन था बाबा के सामने, ऐसे कोई कर्म ही नहीं था, निर्बंधन हो गए। तो इसीलिए जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है तो नेचुरल है कि निर्बंधन स्वतः होती जाती है, निर्विघन होती जाती है, और अगर कोई परिस्थिति या कोई कारण आया भी तो वो कारण तकलीफ या भोगना का अनुभव नहीं करा सकती है, और विजयी होना स्वाभाविक है, विजयी की स्थिति का अस्तित्व है। तो या तो भोगना का अनुभव होगा या विजयी की स्थिति में मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर अपनी स्थिति में सहजता से शरीर छोड़ करके जाए। तो इसीलिए कहा कि ये हमारा चॉइस है कि हमें किस तरह से रिस्पांस देना है। परिस्थिति तो आएगी, अंत तक आनी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये परिस्थिति हमें प्रत्यक्ष करने के लिए आती है, पास हुए या फेल हुए उसको प्रत्यक्ष करने के लिए आती है। पास हुए तो भी प्रत्यक्षता होती है कि लोग कहेंगे सचमुच इतनी बड़ी परिस्थिति आई लेकिन पास हो गए, उसको हिला नहीं सके। पूछेंगे ऐसी कौन सी विधि अपनाई जो आप अपनी स्थिति में अंदर से हिले भी नहीं, इतना सहजता से आपने इस परिस्थिति के पेपर को क्रॉस किया। तो बाबा कहे इसीलिए जब भी कोई बात आती हो तो ये समझो कि ये मुझे प्रत्यक्ष करने के लिए आई, और मेरी प्रत्यक्षता से बाबा की प्रत्यक्षता उसमें समाई हुई है, मेरी प्रत्यक्षता में बाबा की प्रत्यक्षता भी समाई हुई है। इसीलिए एक मिनट वेंकटेश भाई को, भाई को मना करो फोन ले फोटो ले ले। तो इसीलिए कहा कि वो प्रत्यक्ष करने आई है, चाहे हमें प्रत्यक्ष कर रही है, हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता है, ये स्पष्ट है। इसीलिए जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति आती है उसका पॉजिटिव साइड बहुत है, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो वो हमें अंदर से विचलित नहीं कर सकती है, हमें अंदर से हिला नहीं सकती है, ये हमें अंदर से मजबूती प्रदान करेगी। पेपर आया है, बस बाबा ने कहा हुआ है पेपर जो अंतिम पेपर आएगा एक सेकंड का होगा, इसलिए कोई भी अभ्यास हम करते हैं इस तरह का होना चाहिए कि एक सेकंड में बात आई और एक सेकंड में स्मृति स्वरूप हो जाओ, और स्मृति स्वरूप होकर के उसको क्रॉस करो, वो आपको अंदर से हिला नहीं सकता। परिस्थिति के ऊपर विजयी होने का अनुभव सहज हो सकेगा और लगेगा कि जैसे सचमुच मैं विजयी रतन, विजयी माला का मणका हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, और वो विजयी होने की खुशी बहुत सुंदर महसूस होगी। जीवन के अंदर हमेशा हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हम विजयी होकर के 108 की माला में सहजता से आ सके। विजय रत्नों की माला है ना, तो जितना आप विजय का अनुभव यहाँ हर समय करते जाएंगे उतना ही ऐसा फील करेंगे कि कहीं पर भी कोई भी बात आपको नीचे नहीं ला सकती है। इसलिए कहा जाता है कोई परिस्थिति आती है या तो ऊपर उड़ जाओ, उड़ता योगी बनो, या तो अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड कैसे होना होता है? अंतर्मुखी बनने, अंतर्मुखता। कभी कभी कोई परिस्थिति को पार करने का आधार है साइलेंस की शक्ति। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी स्वस्थिति साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ और उससे परिस्थिति को पार करो, क्योंकि वहां अगर बोलने जाएंगे तो 2 का 4 होगा, 4 का 8 हो सकता है। इसलिए ऐसे समय पर परिस्थिति जब आई है साइलेंस की शक्ति को अपना करके, साइलेंस से अंडरग्राउंड होकर, अंतर्मुखी होकर, अंडरग्राउंड होकर के उसको पार करो। क्योंकि एक बात तो जरूर है, कोई भी परिस्थिति आई है, आने का एक समय है, बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका एंडिंग पॉइंट भी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। लेकिन कभी कभी हम उस परिस्थिति के वश होकर के उसको खींचना चालू करते, उसने ऐसा बोला, उसने 10 लोगों के सामने वर्णन करते रहेंगे, इसने ऐसा बोला, देखो उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ऐसे थोड़ी। अब वो बात को हम खींच रहे हैं, बात आई और चली भी गई, लेकिन उस बात को खींच रहे हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 10 दिन तक, तो वो इलास्टिसिटी बनती जा रही और वो बात खींचते 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 कभी तो 10 दिन क्या, महीना क्या, 2 महीना क्या, और फिर 2 महीने तक कोई बात खींचेंगे उसका स्वरूप बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बात का स्वरूप बनेंगे या बाबा की श्रीमत का स्वरूप बनेंगे, स्वस्थिति पावरफुल बनाएंगे, क्या होगा? अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं। बात आई है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका एंडिंग पॉइंट है, सुबह आई शाम तक चली भी गई वो बात, उसके बाद फुल स्टॉप। इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो बात आगे बढ़ेगी नहीं और ना आप उसका स्वरूप बनेंगे, और तब ऐसा लगेगा कि वो परिस्थिति बहुत बड़ी थी जो मैंने क्रॉस किया। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे क्रॉस किया है, कितना मुझे उसकी भोगना भोगनी पड़ी। लेकिन वो बात को खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे तो इलास्टिक की तरह वो खींचती चली जाएंगी। तो बात तो एक दिन की थी, आई और चली गई, लेकिन खींच खींच करके हमने कितना लंबा किया उसको, 10 दिन तक, 1 महीने तक लंबा कर दिया। तो बात का स्वरूप, इसीलिए बाबा कहे समस्या का स्वरूप नहीं बनो, समाधान का स्वरूप बनो। आकर चली गई तो बस उसका समाधान हो गया, उस समाधान का स्वरूप बनो, समस्या का स्वरूप क्यों बनते हैं? जो वो हमें तकलीफ का एहसास दे सके, पर है, पर स्थिति है, वो पावरफुल है या मेरी स्वस्थिति पावरफुल है? तो मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ स्वमान में जब स्थित हूँ तो मेरी स्वस्थिति इतनी पावरफुल है कि वो परिस्थिति मुझे किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती। और मैं विजयी रत्न हूँ, विजय माला का दाना बनने वाली आत्मा हूँ। जब लास्ट तक इस तरह से हर परिस्थिति में विजयी बनते जाएंगे तो लास्ट की जो पेपर आएगा तो उस पेपर में क्या होंगे, विजयी होंगे फेल होंगे? फेल तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार की विधि को हमने अपना लिया है, तभी तो विजयी रत्न बने हर बार। तो इसीलिए आवश्यकता है कि अपने स्वस्थिति को हम चाहे किसी भी विधि से, चाहे उड़ जाओ चाहे अंतर्मुखी होकर अंडरग्राउंड हो जाओ। आइए चली गई, बस पूरा हुआ। हमें सामना करने की जरूरत नहीं है। जहाँ सामना करने का प्रयास किया, किसी की भी कमजोरी के साथ आने का प्रयास किया, तो वहाँ वो कमजोरी विकराल रूप जरूर लेगी और वो हमें हर रीति से दमक करेगी ही करेगी। इसीलिए आवश्यकता है कि ये समय में मुझे अपनी कमजोरियों को भी जितना हो सके उस प्रयोग में नहीं लाना है, क्योंकि नहीं तो वो संस्कार बनेंगे। जैसे संस्कार बनते कैसे हैं? संस्कार तभी बनता है जब कोई न कोई कमजोरी को बार बार प्रयोग में आती गई वो कमजोरी, तो वो कड़ा संस्कार बन गई। इसी तरह संस्कारों को खत्म करने की विधि क्या है? उस कमजोरी को प्रयोग ही नहीं करो, जितना हो सके उसको अवॉइड करो, तो प्रयोग में आने न दो। काफी समय तक जब प्रयोग में नहीं आएंगे तो वो संस्कार लुप्त हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे कहते ना भाई, आदत को तोड़ने का तरीका क्या है? जैसे किसी को चाय पीने की आदत है, चाय पिया नहीं कि बस सर दर्द किया, इसलिए चाय पीना ही है, नहीं तो सर दर्द करेगा। बार बार पीते जाएंगे तो नेचुरल है, वो तो मजबूत हो गया ना वो संस्कार तो। लेकिन अगर कई दिनों तक जो छोड़ने का दृढ़ संकल्प है और कई दिनों तक दो चार दिन सर दर्द किया भी, अगर कोई किसी न किसी विधि से उस सर दर्द को खत्म कर दिया, मैं एक हफ्ते के बाद फिर सर दर्द करेगा नहीं करेगा? तो आदत को तोड़ना होता है, और तोड़ने के लिए जब वो आदत टूट गई तो उसके बाद वो संस्कार लुप्त हो गया। तो चाय पीने का जो संस्कार था वो समाप्त हो गया। इसी तरह कोई भी संस्कार, कोई भी सूक्ष्म संस्कार, ये तो एक स्थूल आदत, आदत को तोड़ने के लिए भी कुछ समय चाहिए, तब वो आदत टूटती है। तो इतने जन्मों का जो संस्कार क्रिएट हुआ है, उस संस्कार को मिटाने की विधि क्या है? कि उस संस्कार को प्रयोग होने न दे। जब कई दिनों तक उसको प्रयोग नहीं होने देते हैं, तब धीरे धीरे संस्कार लुप्त होने लगता है, वो ढीला हो जाता है, ढीला होकर के समाप्त हो जाता है। लेकिन जितना वो प्रयोग होते जाएगा उतना वो धीरे धीरे, जैसे पहले तो रोग के रूप में आता है, क्रोध के रूप में आता है, फिर वो पड़ता जाता है ना। इसी तरह अहंकार में भी पहले तो बॉडी कॉन्शियसनेस आता है, देह भान आता रहता है, फिर देह अभिमान के रूप में बदलता है, देह अभिमान के बाद देह अहंकार के रूप में आता है। तो इस तरह से आगे बढ़ाओ, बार बार प्रयोग होने से उसका स्वरूप बढ़ता गया। तो उसको खत्म करना है तो उसका प्रयोग ही न करे, जितना अवॉइड सके उसको अवॉइड करते जाओ। तो वो संस्कार धीरे धीरे कमजोर होगा कि नहीं होगा? और कमजोर होते होते फिर समाप्त हो जाता, लुप्त हो जाता है। इसीलिए बाबा कहे, दृढ़ संकल्प का प्रयोग करो, ये सच्ची तपस्या है। जितना दृढ़ संकल्प धारी बन करके हम करेंगे, उतना हर संस्कार के ऊपर सहजता से विजयी। जन्मते ही ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, और इस दिव्य बुद्धि के वरदान से हम सहजता से परख सकते हैं ये संस्कार सही है या गलत, ना सही है या गलत। जैसे ही अंदर एक ने कहा गलत है, उसका प्रयोग नहीं करना है, एक प्रयोग होने नहीं देना। तो इस तरह से संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा, वो संस्कार जीत, क्योंकि वो संस्कार तो बहुत बड़ी परिस्थिति को निर्मित करने के निमित्त बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी जीवन परिस्थिति आती है ना, उसमें से कम 70% परिस्थिति जो है अपने ही संस्कारों से निर्मित है, अपनी कमजोरी के संस्कारों से निर्मित है। कहीं अहंकार प्रयोग किसी के साथ है तो वो व्यक्ति फिर बदला तो लेगा, वो भी दिखाएगा तो स्वरूप, अपना स्वरूप भी, वो तो ज्ञानी है, ज्ञानी भी होगा तो भी वो अहंकार वश अगर होगा, अपना स्वरूप तो दिखाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि 70% जो परिस्थिति आती है हमारे ही कोई न कोई कमजोरी के संस्कारों का तो होता है, उसी से निर्मित होती है। 30% बाहर से आती है, प्रकृति से आती है ना? या कोई नई परिस्थिति जो घटनाएं घटती है उसे आती है, बाकी 70% तो हमारे अपने कंट्रोल में है। हमें बस सिर्फ अपने संस्कारों को रियलाइज करते हुए चेंज करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, ये ठीक नहीं है छोड़ दो, इसको समाप्त। जब ऐसे समाप्त करते जाएंगे तो हमारी स्वस्थिति पावरफुल होगी और हर परिस्थिति के ऊपर हम विजयी, जो बाहर से आने वाली परिस्थिति है उसके ऊपर भी विजयी होने का अनुभव सहज होते, क्योंकि अंदर से हम इतने मजबूत हो गए, इतने पावरफुल हो गए। ठीक है, तो ये है स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजयी होना। ऑप्शन
Bye.